नमस्कार भारत, 11 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में दो बम धमाकों में कम से कम 15 लोगों की मौत। भारत में 1500 के पुराने नोट बंद होने से लंदन में रहने वाले भारतीय भी हैं परेशान।
मेरे पास 50,000 रुपीस था, हमारा रिश्तेदार उधर जा रहा था तो उनके साथ भेजा, कस्टम में निकाल दिया, वो बोलते हैं उन सिर्फ 5,000 अलाउ है, 45,000 उस वो लोग ने ले लिया।
मिलिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से, और आज अभिनेता दिलीप कुमार मना रहे हैं अपना जन्मदिन।
प्रेम का छुट्टी है, पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कतक होई बेकरी।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। तुर्की के इस्तांबुल में हुए दो बम धमाकों में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। हमला एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ, एक पुलिस दस्ते की बस को निशाना बनाकर ये धमाके हुए। दक्षिणी यमन में सेना के एक कैंप में हुए आत्मघाती हमले में 45 सैनिकों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों के मुताबिक हमला अदन शहर में स्थित सेना के एक कैंप पर तब हुआ जब बैरक में सैनिक अपना वेतन लेने के लिए जमा हुए थे। स्टॉकहोम में इस साल के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बांटे गए। हालांकि समारोह में 10 में से 9 विजेता ही मौजूद रहे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डिलन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि जब उनके नाम की घोषणा हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। बाद में रात्रि भोज के दौरान स्वीडन में अमरीकी राजदूत अजीता राजी ने डिलन का संदेश पढ़कर सुनाया।
I have been doing what I set out to do for a long time now. I've made dozens of records.
मैं वही कर रहा हूँ जो करने की मैंने सालों पहले योजना बना रखी थी। मैंने दर्जनों रिकॉर्ड बनाए, पूरी दुनिया में घूमा, हजारों कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया, लेकिन मेरे गाने मेरे लिए सबसे अहम हैं। मैं जो भी करता हूँ उसके केंद्र में मेरे गाने ही होते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए मैं हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो चुका हूँ। मुझे अलग अलग संस्कृतियों के लोग पसंद करते हैं और इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। ये थे बॉब डिलन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त दिलाने के लिए रूस ने दबे छिपे तरीके से काम किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हैकिंग में रूस की भूमिका के संबंध में अमरीकी खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के अनुसार CIA ने अपने मूल्यांकन में भी इसी तरह की बातें पाई हैं, लेकिन ट्रंप की टीम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी शहर ओयो में एक चर्च की छत ढहने से 60 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। खबरें हैं कि अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ईरान ने ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ब्रितानी राजदूत को बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में अपने संबोधन के दौरान टेरिजा मे ने कहा था कि ब्रिटेन मध्य पूर्व में ईरान के आक्रामक तेवरों को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक टेरिजा मे का ये बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक स्टेडियम के बाहर दो धमाके हुए हैं जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 40 अन्य घायल हुए हैं। धमाके की जिम्मेदारी, इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी गुट ने नहीं ली है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए प्रभात पांडे से।
लगातार दो धमाकों के बाद इस्तांबुल में अफरा तफरी का माहौल। एक स्टेडियम के बाहर हुए इन धमाकों के बाद चश्मदीदों ने धुआं निकलते देखा और गोलियों की आवाज भी सुनी। घटनास्थल पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों को दौड़ते हुए देखा गया है। टीवी फुटेज में ये भी दिखाया गया है कि स्टेडियम के बाहर लपटें उठ रही हैं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस दस्ते को निशाना बनाते हुए ये हमले हुए, जिनमें एक कार बम धमाका था और दूसरा एक आत्मघाती विस्फोट। ये हमले दो मशहूर फुटबॉल क्लबों के बीच हुए एक मैच के करीब घंटा भर बाद हुए। धमाके के बाद एक चश्मदीद उमर यिलमेज ने बताया, धमाके से बस 5 मिनट पहले ही मैं कॉफी शॉप में दाखिल हुआ था। मैंने 30 सेकंड के अंतराल में दो बेहद तेज धमाके सुने, उसके बाद मैंने आग की लपटें भी देखी। मैं भागकर पुलिस वाहन के पास पहुंचा तो उसमें आग लगी हुई थी और उसके अंदर पुलिस वाले भी थे। पास की एक मस्जिद की खिड़कियां भी धमाके से चटक गईं। मुझे लगता है कि इसमें कई लोग मारे गए होंगे और कई जख्मी हुए हैं। ये थे इस्तांबुल धमाके के एक चश्मदीद उमर यिलमेज के शब्द। अब तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन समझा जा रहा है कि इसके पीछे कुर्द चरमपंथियों या इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है। हाल के महीनों में तुर्की में इस तरह के कई हमले हो चुके हैं जिनमें दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी साल 20 अगस्त को एक शादी के समारोह में ब्लास्ट होने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले 30 जुलाई को सेना के एक कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे 35 कुर्द लड़ाकों को सैनिकों ने मार दिया था।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में दो धमाकों में कम से कम 15 लोगों की मौत, 40 से ज़्यादा लोग घायल। रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। भारत में 1500 के पुराने नोट बंद हुए एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, जिसका असर विदेशों में भी नज़र आ रहा है। लंदन में खासी तादाद में भारतीय रहते हैं जिन्हें अपने पुराने नोट बदलने का विकल्प ही नज़र नहीं आ रहा। लंदन से हमारी सहयोगी इश्लीन कौर की रिपोर्ट।
500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगे पूरा एक महीना हो चुका है। भारत में लोगों को हो रही परेशानियों की चर्चा तो आम है, लेकिन देश के बाहर भारतीयों के पास यहाँ के बैंकों से नोट बदलवाने का अब तक कोई भी विकल्प नहीं है। लंदन में स्थित भारतीय बैंकों ने यह साफ कर दिया है कि वो ये नोट बदलवाने में या फिर इनका कोई भी विकल्प सुझाने में कोई मदद नहीं कर सकते। बैंक ऑफ बड़ौदा के धीमंत त्रिवेदी ने हमें इसकी वजह बताई।
भारतीय बैंक जो यहाँ स्थापित हुई है, जो ब्रांचेस है या वो दूसरे बैंकों की सब्सिडरीज है, तो दोनों लोकल बिजनेस कर रही हैं और यहाँ की लोकल करेंसी में ही डील कर रही हैं। उनका जो मैंडेट है वो सिर्फ लोकल करेंसी का है, इसलिए वो लोग दूसरी करेंसी यानी इंडियन करेंसी पर डील नहीं कर रही है, और ऐसे भी इंडियन करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है।
लंदन के वेम्बली इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। इनमें से कई साल में कम से कम एक बार तो भारत जरूर जाते हैं, इस वजह से इनके पास भारतीय मुद्रा रहती है। ऐसे ही कुछ चिंतित लोगों ने हमसे बात की।
मेरे पास 50,000 रुपीस था, तो मैंने जब ये सुना 500 नोट्स 1,000 नोट्स, तो मैंने ये हमारा रिश्तेदार उधर जा रहा था तो उनके साथ भेजा, तो वो उसने वो कस्टम में निकाल दिया। वो बोलते हैं उन सिर्फ 5,000 अलाउ है और 45,000 नोट्स वो लोग ने ले लिया।
जब भी मैं इंडिया गई तो 1,00,000 रुपया मैंने निकाला मेरे अकाउंट से अहमदाबाद से, तो हमने लेकर आ गया 50,000 रुपीज़। कोई जो इंडिया जाता है मैं उसको पूछती हूँ को इंडिया मेरे रुपये ले जाओ, अभी क्या करेगा पड़ा है अभी तो।
रिजर्व बैंक ने हमें बताया कि इस समस्या पर वो विचार कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा वक्त और लगेगा। फिलहाल भारत में जाकर ये नोट बदले तो जा सकते हैं, लेकिन सबके लिए भारत जाना मुमकिन भी तो नहीं। कुछ लोगों ने तो रिजर्व बैंक को खत लिखकर सुझाव भेजे हैं। लंदन की एक भारतीय गैर सरकारी संस्था से जुड़े सीजे रबेरू बता रहे हैं अपने सुझावों के बारे में।
ये जो पैसे बचे हुए जेन्युइनली एक्सचेंज किए हुए होते हैं पैसे, जैसे मेरे पास है अभी, मेरे पास लगभग 90,000 to 20,000 रुपीज़ है। कायदे से उसको पैसे 50 pound नोट देके एक्सचेंज किया था। मेरा सुझाव इंडियन गवर्नमेंट को यही है कि वर्ल्ड वाइड जो NRIs है और यूके के साथ लेके मैं चलता हूँ, एक साल की मुदत हमको दे देवे। जब हम इंडिया जाए तो हम आइदर ए नॉमिनेटेड बैंक के पास जाए, जो जो जिसके पास हमने नॉमिनेट किया उसके पास जाए, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके वहाँ जाके डिपॉजिट करवाए कि भाई ये पैसे हम लीगली ले गए थे, रिटर्न में वो सेम अमाउंट वापस देते हैं।
भारत के बाहर रह रहे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नाराजगी भी है क्योंकि उनके पास अपने पुराने नोट बदलने के विकल्प काफी सीमित हैं और इस बारे में कोई साफ दिशा निर्देश भी नहीं है। उम्मीद है देश से बाहर बसे लोगों की परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। इश्लीन कौर, PBC News, लंदन।
भारत में विपक्ष पिछले कई दिनों से विमुद्रीकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उन्हें संसद में बोलने ही नहीं दिया जा रहा। कल गुजरात में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
पार्लियामेंट चलने दी नहीं जा रही है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका जूस टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है।
वहीं इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो संसद में प्रधानमंत्री को घेरना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें बोलने ही नहीं देता।
मुझे बोलने से रोक रहे, मैं तैयार हूँ, एक महीने से तैयार हूँ। सरकार ने हमें कहा कि भाषण होना चाहिए, हमने कहा करवाइए। मैं हाउस के अंदर डीमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूँ और मुझे रोका जा रहा है।
विपक्ष कह रहा है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो संसद में इतने दिनों से हंगामा कौन कर रहा है? समझने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी से बात की।
बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है, वो राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बोलना चाहते थे, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। बोलना दोनों लोग चाह रहे हैं और दोनों की यही शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक ऐसी राजनीति नोटबंदी को लेकर के चल रही है, एक ऐसी तरह की पैतरेबाजी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में हुई है कि बड़ी हैरानी होती है कि दोनों ही पक्ष जो हैं किसी न किसी रूप में ये चाहते थे कि बातचीत लटकी रहे, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि विपक्ष आखिर उसको क्यों इस मांग पे जोर दे रहा था कि साहब वोटिंग वाले नियम के तहत बहस होनी चाहिए, और ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार को इसमें खतरा क्या नजर आ रहा था। सरकार तो बहुमत में, स्पष्ट बहुमत में है, तो उसे क्या दिक्कत थी कि वो लोकसभा में इस नियम के तहत बहस कराने से वो इनकार कर रही थी। ये बड़ी पहेली है एक तरह से।
ये जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि चूंकि एक चर्चा शुरू हो चुकी है और डेढ़ दिन तक चल चुकी है, आनंद शर्मा ने वो चर्चा शुरू की थी, तो जब तक वो चर्चा पूरी नहीं हो जाए तब तक हम कैसे किसी और चर्चा को क्यों शुरू करें, ये दलील कितनी वाजिब है?
ये सिर्फ जो है एक तरह से अड़ंगेबाजी की टैक्टिक्स ही हो सकती है, क्योंकि अब नोटबंदी को सरकार अगर मानती है कि उसका बड़ा अच्छा कदम है, सरकार अगर मानती है कि जनता जो है उसका बहुत सपोर्ट है, तो जब सरकार को ये के सारे दावे थे कि उसके पास इतना समर्थन है तो उसको बहस से भागना क्यों चाहिए था टेक्निकल रीजन से? अगर विपक्ष दबाव डाल रहा था कि बहस कराए तो सरकार को बहस करानी चाहिए थी और अपने पक्ष में जितनी बातें थी सारी की सारी कहनी चाहिए थी। पर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा करने से सरकार को फायदा क्या हुआ। जिस समय ये नोटबंदी का मामला शुरू हुआ था उसके तुरंत ही बाद संसद का सत्र शुरू हुआ था, तो जमीनी हकीकत ये थी कि जनता में नोटबंदी को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव वाइब थे। लोग मतलब अर्थशास्त्री बहुत से उसकी आलोचना कर रहे थे, मैं भी उसकी आलोचना कर रहा था, लेकिन मैंने लोगों को नहीं उस समय पाया कि वो ज्यादातर लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई आदमी जो है इसकी आलोचना करता नहीं दिख रहा था। अब जरूर ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब बहुत परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार उस समय बहस करा के इस चर्चा को खत्म कर देती तो वो शायद टैक्टिकली ज्यादा फायदे में रहती।
विपक्ष भी तो अड़ा हुआ है कि हम उसी नियम के तहत चर्चा कराएंगे और फिर प्रधानमंत्री आए भी संसद में, हंगामा ही होता रहा।
देखिए मुझे लगता है वो ये कि शुरू में विपक्ष जो है वो चाहता नहीं था कि बहस हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी आपको कि शुरुआत के दिनों में जनता में एक संदेश गया था कि साहब मोदी सरकार काला धन को खत्म करने के लिए इतना बोल्ड कदम उठा रही है, तो जनता में एक प्रकार से उसका समर्थन था। उस समय जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, जनता उससे कन्विंस लग रही थी और विपक्ष जो है एक प्रकार से उस समय जनता की निगाह में खलनायक के तौर पे था। तो ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के सामने कोई चारा नहीं हो, क्योंकि वो नोटबंदी का समर्थन कर नहीं सकता था और वो विरोध करता तो फिर उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जनता का मूड जो है उसके विरुद्ध चला गया तो कहीं नोटबंदी के मामले में भी ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है कि उसकी तो ये टरकाने की टैक्टिक्स थी कि इस मामले को जितना दिन टरकाओ टरकाते रहो।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी। और आइए अब बात दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की, जहां दिवंगत जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक के कुछ नेता अब शशिकला को पार्टी का मुखिया बनाना चाहते हैं। तो क्या शशिकला जयललिता की जगह ले पाएंगी? कितना आसान और कितना मुश्किल होगा ऐसा करना? समझने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ पत्रकार एम आर नारायण स्वामी से बात की।
शशिकला और जयललिता में कोई कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है शशिकला में एक इच्छा हो कि मैं जयललिता के बहुत पहले से करीब रही हूँ, उनकी दोस्त रही हूँ और उनकी एक तरह से कॉन्फिडेंट रही हूँ, तो वो जगह तो मुझे मिलनी चाहिए जो जगह जयललिता के पास थी, वो पोस्ट के तौर पर उन्हें मिल सकती है।
दोनों के रिश्तों पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि किस तरह से दोनों मिले और फिर ये इतना लंबा एसोसिएशन चलता रहा।
जितना लोगों को मालूम है तमिलनाडु में, इनके पति मिस्टर नटराजन थे जो सरकार में काम करते थे और शशिकला उसमें वीडियो रेंटल बिजनेस में थी, और जब इनकी मुलाकात जयललिता के साथ हुई, और जैसा अक्सर होता है उन राजनीतिक नेताओं के साथ जिनका अपना परिवार नहीं है, वो किसी न किसी के करीब हो ही जाते हैं और वो व्यक्ति भी उनके बहुत करीब हो जाता है, और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर कल आपने जयललिता से बात करनी हो तो सबसे पहले शशिकला से बात करना होगा। ये सब चीजें तमिलनाडु में हुई, लेकिन करीब होना एक बात है, उनकी जगह लेना दूसरी बात है।
जयललिता को जो लोग नापसंद करते थे या जो उनकी छवि के जो नकारात्मक पहलू हैं, उसमें बड़ा योगदान शशिकला का है, कुछ लोगों की ऐसी राय है, आप क्या कहते हैं?
ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि सारी नकारात्मक गुण केवल शशिकला में थी लेकिन जयललिता इसे पहचान नहीं पाई, तो ये तो फिर नकारात्मक गुण जयललिता का खुद हुआ। उनके निधन के बाद ये कह देना कि भाई जो कुछ नकारात्मक चीज हुआ वो फलाने के वजह से हुआ और जो कुछ सकारात्मक हुआ वो तो जयललिता की वजह से हुआ, ये तो बहुत एक सिंपल एनालिसिस है जो किसी भी राजनीतिक लेवल में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में एक तरीके से जयललिता की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ या उनकी बीमारी के दौरान जितने भी फैसले थे, चाहे वो उनकी बीमारी से जुड़े हों या दूसरे हों, निजी तौर पर शशिकला ही वो सारे फैसले ले रही थी, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब एक तरीके से वो पहले से ही इस चीज के लिए अपने को तैयार कर रही थी?
जो डिसीजन लिए गए उसमें तो कोई डिसीजन ऐसा नहीं होता, मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम बने या उसके पहले एक चिट्ठी लोगों को बोला गया कि जयललिता ने लिखा है कि भाई पनीरसेल्वम कामकाज को संभालेंगे, तो इसका अप्रूवल तो कहीं ना कहीं गवर्नर की तरफ से भी हुआ। गवर्नर कह सकते थे भाई मैं इसको मानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तो माना, तो हमें तो ये कानूनी तौर पर ये सोच के चलना पड़ेगा कि शशिकला का ये निर्देश था कि पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कार्यभार संभालेंगे, तो पूरा ये कह देना कि जो कुछ निर्णय लिया गया या जो कुछ हुआ या जो कुछ तय हुआ उस सबके पीछे शशिकला का हाथ था, ये उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देने वाली बात हो जाएगी।
पनीर सेल्वम भी तो पार्टी के प्रमुख हो सकते हैं, क्या इसकी कोई गुंजाइश नहीं देख रहे आप?
पार्टी में तो प्रमुख नाम के वास्ते कोई भी हो सकता है, लेकिन सरकार में भी एक प्रमुख किसी को बनना है। अब उनका जो स्टेचर था जयललिता का, वो उस तरह का स्टेचर था जहां पर वो सरकार में भी और पार्टी में भी दोनों जगहों में प्रमुख बन सकते थे, लेकिन यहां पर हालत वैसी नहीं है। पनीरसेल्वम भी कोई ऐसे बहुत बड़े विद्वान नेता नहीं है या कोई ऐसे कैरिस्मेटिक नेता नहीं है कि उनके कहने पर लाखों लोग उठ खड़े हो जाएंगे, तो सरकार के नेता तो वो पहले भी रहे हैं दो बार और इस बार तो बन ही गए, तो स्वाभाविक है कि ना वो इस संदर्भ में है ना इससे मतलब इस पोजीशन में है कि वो दोनों चीजों को संभाल पाएंगे और संभालने की कोशिश भी करेंगे, मैं समझता हूँ विफल होंगे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार एम आर नारायण स्वामी, और इसी के साथ मेरे सहयोगी प्रभात पांडे ठंडे ठंडे अखबारों के साथ स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं। प्रभात, दिल्ली की सर्दी में अखबारों में खबरों की कुछ गर्मी है आज?
जी संदीप, ये जो खबर अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे वही खबर जो है कई अखबारों में पहले पन्ने पर है।
शशिकला
जी, द हिंदू में और जनसत्ता में दोनों ने इसको पहले पन्ने पर जगह दी है कि AIADMK के नेताओं ने शशिकला से अनुरोध किया है कि वो पार्टी की बागडोर संभालें। हालांकि दिवंगत जयललिता की जो भतीजी हैं दीपा कुमारी, वो कई टीवी चैनलों में और अखबारों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने शशिकला की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं, तो ये खबर है। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में नोटबंदी पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में जो कहा था उनके बयान को प्रमुखता दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद का रास्ता मुश्किल ज़रूर है और प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद साबित होगा। اس کے ساتھ ساتھ ٹائمز آف انڈیا میں ایک دلچسپ خبر امریکہ کے نرواچت راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو بھی پہلے پنے پر چھاپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وونٹ الاؤ ایچ ون بی ویزا ہائرز ٹو ریپلیس یو ایس ورکرز، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی کامگاروں کی جگہ ودیشی کامگاروں کو نہیں لینے دیں گے۔ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ ان کے چناؤ پرچار کا بھی حصہ رہا ہے سندیپ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی سنکھیا میں بھارتی لوگ امریکہ میں ایچ ون بی ویزا لے کر کام پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز نے پہلے پنے پر خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے خبر چھاپی ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں آتنکی حملوں سے راجدھانی دلی پہلے کی تلنا میں سرکشت ہوئی ہے۔ جہاں سال 2012 میں آتنکی حملوں کے الرٹ 77 الرٹ ملے تھے، وہیں اسی سال ستمبر تک دلی میں آتنکی گھٹناؤں کے محض 29 الرٹ ہی جاری کیے ہیں۔ جنستہ میں خبی چھپر کے چھپی خبر کے مطابق کرناٹک کے ایک حوالہ کاروباری کے گھر پر چھاپا مار کر کروڑوں روپے کا کیش برآمد کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ کیش ان کے باتھ روم میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ جنستہ میں ہی جو خبر چھپی ہے، ودیش منتری سشما سوراج کا کڈنی پرتیاروپن کا 5 گھنٹے تک ایمس میں آپریشن چلا جو سفل رہا ہے، کسی اگیات ویکتی نے کڈنی دی ہے تو ان کے بارے میں ابھی تک جانکاری حاصل نہیں ہو پائی۔
ان کے آپریشن کی خبر آئی تھی کہ انہیں کڈنی کی ضرورت ہے، تب کئی لوگوں کے نام سامنے آئے تھے کہ آپ ہماری کڈنی لے لیجیے، لیکن اب یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ کس کی کڈنی انہیں لگی۔
جی جی آپ نے ٹھیک کہا، ٹویٹر پر ہزاروں لوگوں نے اپنی کڈنیاں انہیں ڈونیٹ کرنے کا پرستاؤ رکھا تھا۔ دی انڈین ایکسپریس میں بھی ایک دلچسپ خبر یہ چھپی ہے کہ کیندریہ منتری وی کے سنگھ اور سدانند گوڑا کے جو ہوائی یاترا میں پچھلے 4 مہینوں کے جو خرچے ہیں ان کو سرکار نے منظوری نہیں دی ہے، کیونکہ ان دونوں منتریوں نے پچھلے 4 مہینے کے دوران جو 28 آدھیکارک یاترائیں کیں وہ ایئر انڈیا سے نہیں کی تھیں، اور سرکاری نیم کے انوسار آدھیکارک یاتراؤں کے لیے منتری جو ہے وہ صرف ایئر انڈیا کو ہی چن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وراٹ کوہلی، بھارتی کرکٹ کپتان وراٹ کوہلی نے جو کل انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں شتک بنایا وہ بھی پہلے پنے پر چھائے ہیں، اور وراٹ کوہلی کی بہت تعریف کر رہے ہیں۔
بالکل ایک کے بعد ایک نئے کیرتیمان
اور لوگ انہیں سچن تیندولکر سے کمپیئر کر رہے ہیں، کئی تو کہہ رہے ہیں ان سے بہتر ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات بول کے میں یہ ختم کرنا چاہوں گا سمیکشا، وراٹ کوہلی ایک دلچسپ ٹپڑی میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی تھی کہ کاش وراٹ کوہلی اے ٹی ایم ہوتے تو کبھی کیش کی کمی ہی نہیں ہوتی۔
کیا بات ہے لیکن وراٹ کوہلی اے ٹی ایم نہیں بن سکتے۔ بہت شکریہ سماچار پتروں کی سمیکشا کے لیے۔ بی بی سی ہندی 12 دسمبر 2016 سے اپنے کارکرموں میں کچھ فیر بدل کرنے جا رہی ہے، یہ بی بی سی کے شروتاؤں اور پاٹکوں تک پہنچنے کی ہماری لگاتار کوششوں کا حصہ ہے، اور نئے پلیٹ فارمز پر اپنے پاٹکوں اور شروتاؤں کو بہترین سیوا مہیا کروانا اس کا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں بی بی سی ہندی صبح اور شام کے دوسرے پرسارنوں کو بند کر رہی ہے، یعنی صبح 8 سے 8:30 تک پرسارت ہونے والا وشو بھارتی اور شام کو 9:30 سے 10 بجے تک پرسارت ہونے والا گھٹنا چکر کارکرم اب پرسارت نہیں کیا جائے گا، لیکن صبح 6:30 سے 7 بجے پرسارت ہونے والا کارکرم نمسکار بھارت اور شام 7:30 سے 8 بجے والا کارکرم دن بھر پہلے کی طرح پرسارت کیے جاتے رہیں گے۔ بھارت میں ریڈیو بی بی سی کے آپریشن کا بہت مہتوپورن حصہ ہے، اور ہم پترکاریتا کے سروشریشٹھ ماندنڈوں کے مطابق ریڈیو پر اپنے شروتاؤں کی سیوا کرتے رہیں گے۔ شروتاؤں کی سیوا کرنے کے اسی وچن کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت میں بی بی سی کا وستار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ڈیجیٹل اور ٹی وی پلیٹ فارمز پر مراٹھی، پنجابی، گجراتی اور تیلگو بھاشا سیوائیں شروع کی جائیں گی۔ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے شروتاؤں اور پاٹھکوں کے پرتی سمرپت ہیں، اور اب رویوار کی طرح ہر رویوار کی طرح آپ کو انتظار ہوگا بی بی سی نیوز میکرز کا۔
نمسکار، بی بی سی نیوز میکرز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں انڈین بیڈمنٹن پلیئر پی وی سندھو، جنہوں نے ریو اولمپکس میں بھارت کو رجت پدک دلایا، اور اس سال انہوں نے اپنا پہلا سپر سیریز ٹائٹل چائنا اوپن بھی جیتا، اور ابھی وہ دبئی میں دبئی سپر سیریز ٹائٹل کھیلنے والی ہیں اس 14 دسمبر سے۔ سندھو، بہت بہت سواگت ہے آپ کا بی بی سی نیوز میکرز میں۔ آپ نے ریسنٹلی چائنا اوپن جیتا، فائنل مقابلے میں آپ نے چائنا کی سنیو کو 21-11، 17-21 اور 21-11 سے ہرایا۔ کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں میچ کھیلتے ہوئے، اور سنیو کی کون سی چیز آپ کو سب سے اچھی لگی؟
آئی فیلٹ ریئلی ویری ہیپی اینڈ بہت اچھا لگا۔ آف کورس میرا فرسٹ سپر سیریز ٹائٹل تھا چائنا، اور سنیو کے ساتھ میں 2 سال کے بعد کھیل رہی تھی، تو وہ بہت اچھا کھیلتی تھی۔ اس کا ہائٹ بھی بہت اچھا ہے، اسٹروکس بھی بہت اچھا ہے، بٹ آئی تھنک اوور آل فائنلس میں بہت اچھا میچ تھا اینڈ وہ بھی بہت اچھا کھیلی۔
آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے کریئر کی بیسٹ فارم میں ہیں؟
यस ऑफ कोर्स, हांगकांग होने के बाद मैं सेलेक्ट हुई थी, तो फिर अगर मकाओ खेलती तो 1 वीक ही रहता था, तो इसीलिए मैं वापस आ गई थी ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपको क्या लगता है कि कौन से देश के खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेलते हैं, जापान या चाइना?
बहुत अच्छा प्लेयर्स है, चाइनीज भी बहुत अच्छा खेल रहे। देर आर सो मेनी प्लेयर्स, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब चाइना से, नहीं तो कोरिया से, बहुत लोग हैं, बहुत प्लेयर्स हैं, तो यू नो ऑन दैट डे हु प्लेज वेल एंड गिव देयर बेस्ट इज द विनर व्हाट आई फील।
आपके और साइना के बाद इंडिया में उभरता हुआ सितारा कौन है बैडमिंटन में?
ऑफ कोर्स आफ्टर मी एंड साइना देयर आर सम ऑफ द जूनियर्स लाइक ऋतुपर्णा एंड ऋत्विका एंड आल्सो मेनी अदर पीपल।
जिस तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उसी तरह एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में जीत आती है, हार आती है, और साथ में आती हैं इंजरीज। काफी खिलाड़ी इंजरी के चलते अपना अच्छा खेल नहीं दिखा पाते हैं।
इंजरीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो यू नो आई ऑल्सो यू नो सफर्ड विद एन इंजरी, मेरे को भी स्ट्रेस फ्रैक्चर था, तो आई ऑलमोस्ट डिडंट प्ले फॉर 6 एंड हाफ मंथ्स। अगेन बहुत मुश्किल है वापस आना है, बट यू नो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ्स एंड इंजरीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, वो आता रहता है।
स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मेहनत और लगन पर तो काफी निर्भर होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। सिंधु, आपको क्या लगता है लक के मामले में?
ऑफ कोर्स लक रहता है, बट उसके साथ बहुत मेहनत करने पड़ेगा। लक जस्ट ऐसे ही नहीं आता है, बट आई थिंक हार्डवर्क ऑल्सो इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
ये साल चला गया 2016, अब 2017 के लिए आपकी क्या क्या प्रिपरेशन है?
अभी जस्ट इमीडिएट एम दुबई सुपर सीरीज है, उसके बाद PBL हमारा लीग हो रहा है वो है, एंड देर आर मेनी मोर टूर्नामेंट्स, बट जस्ट स्टेप बाय स्टेप, तो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज दुबई सुपर सीरीज।
सिंधु, आपने हमसे बात की और हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु बीबीसी न्यूज मेकर्स में।
पाकिस्तान के शहर पेशावर की मशहूर गली किस्सा खवानी में साल 1922 में जन्मे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार आज 94 वर्ष के हो गए हैं। मौका है, दस्तूर भी है।
मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।
प्रेम का छुट्टी है, पटाका तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी।
जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले। जिंद मेरी
अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर प्रभात पांडे से।
बीबीसी समाचार। इस्तांबुल में हुए दो बम धमाकों में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। हमला एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ। दक्षिणी यमन में सेना के एक कैंप में हुए आत्मघाती हमले में 45 सैनिकों की मौत हो गई है। स्टॉकहोम में इस साल के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बांटे गए। समारोह में 10 में से 9 विजेता मौजूद थे। साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डिलन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त दिलाने के लिए रूस ने दबे छिपे तरीके से काम किया था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने इस आरोप का खंडन किया है। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी शहर ओयो में एक चर्च की छत ढहने से 60 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पलमायरा शहर में दोबारा दाखिल हो गए हैं। सरकारी सुरक्षा बलों ने रूसी वायुसेना की मदद से 9 महीने पहले ही पलमायरा से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को खदेड़ा था। ईरान ने ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ब्रितानी राजदूत को बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। एक घंटे के बाद हम फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।